शतांकन अध्याय 10
और श्लोक नंबर
11 से आगे हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्
श्रीमद् भागवत कथा का हम यहाँ पर स्थान कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जीव के ऊपर यदि भगवान को कृपा करने की इच्छा होती है तो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये वास्तविक लाभ है। डायरेक्ट कृपा यदि भगवान की हमें अनुभव करनी है तो वो यही है कि कभी जीव को भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर मिल जाए ना, समझो हमें समझ लेना चाहिए हृदय से कि आज भगवान की कृपा हो गई। और जब ऐसा हो कि हमारी इच्छा हो जाने की और हम किसी कारण से ना जा सके, देखते हैं हमको ऐसा लगता कि हम जाना तो चाह रहे थे कथा में मगर नहीं जा सके, तो इसका मतलब पता है क्या है? भगवान बोला नहीं, इसे कभी होना चाहिए भगवान को ये नहीं, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं जा नहीं सकी। क्या सोचना चाहिए? पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य आ गया, ना जाने कौन से ऐसे बुरे कर्म थे जो मुझे भगवान ने आज बुलाया। तो वास्तव में ये कृपा है कि भगवान हमें कथा श्रवण करने का अवसर देते। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी कथा एक बार बहुत बड़ा पंडाल लगा था, एक दिन 5,000 लोग आए, दूसरे दिन 8,000 लोग आए, तीसरे दिन 10,000 लोग आए। तो वो बहुत खुश होते थे जो आयोजन कर रहे थे, वो लोग को अच्छा लगता था कितने सारे लोग आ रहे हैं कथा से प्रभावित होकर। तो गुरु जी से जाके शिष्य ने पूछा, गुरु जी कथा में मैक्सिमम कितने लोग आने चाहिए हम लोग कथा करें? तो गुरु महाराज ने धर्म तो क्या कहा, एक काफी है, एक भी यदि आता है ना और ये सोच के आता है, उसको लक्ष्य यदि पता होता है कि कथा श्रवण करने का लक्ष्य क्या है, लाभ क्या है, तो मेरे लिए एक ही पर्याप्त है। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि हम कथा में आए हैं तो क्यों आए हैं, व्हाट द पर्पस ऑफ भागवत कथा। भागवत कथा में सत्संग में आने का पता है लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, ये मन जो है ना वो जन्म जन्मांतर से विक्रम हुआ है। मन के अंदर ना जाने कितनी हवस है जो उसको जितना मिलता है तृप्ति नहीं होती है। और ये मन यदि भौतिक वस्तुओं की इच्छा को छोड़कर भगवान के चरणों में लग जाए ना, बस यही एक एकमात्र कथा का उद्देश्य है। तो कथा में आए तो लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा टाइम पास के लिए नहीं होती, बस ये जन्म जन्मांतर का बिखरा हुआ मन सिमट जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, वो रह जाए, बात एक कहीं दूर थी हमारे हृदय से बहुत दूर चली जाए और एक ही ख्वाहिश रह जाए दिल में कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त करूं। और वास्तव में कृष्ण प्राप्ति ही कथा का उद्देश्य नहीं है। ये कभी ऐसा लगता है कृष्ण प्राप्ति हमारे जीवन का होगी, कृष्ण को प्राप्त करना थोड़े है, प्राप्त तो उसको किया जाता है जो कि हमें प्राप्त ना हो, है ना? प्राप्त तो उसको जो जन्म जन्मांतर से हमारा है, जो इस कुछ भी हो जाओ कृष्ण के बस में एक बात नहीं है, कृष्ण के बस में हर कुछ बात है ना, संसार की वो हर कुछ कर सकते हैं, एक काम नहीं कर सकते, वो चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय में रहने के लिए बाध्य है। हम चाहे कितना भी घृणित कार्य क्यों न कर लें, कितने अपराध कर दें, भगवान कभी भी हमें छोड़ कर नहीं जा सकते, वो तो हमारे हृदय में कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो कृष्ण प्राप्ति जो है वो कथा का उद्देश्य नहीं है, उस कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम प्राप्त हो जाना, ये कथा का उद्देश्य है। तो यदि कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं है या लक्ष्य क्लियर नहीं है ना, तो फिर वो लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होगा। तो जब भी कथा में बैठे ना, तो केवल लक्ष्य को ध्यान में रख के बैठना है कि ना जाने कितने जन्मों से मैं संसार में भटक रहा हूँ, और संसार में भटकते भटकते ना जाने कितने लोगों से प्रेम किया। ये कभी कभी लोग कैंसल करते हैं, मन लगता ही नहीं है ना। फिर बहुत सारे लोगों का कैंसल होता, मन मन का स्वभाव ही लगना है, मन को आता ही एक काम है क्या लगना होगा। देखो संसार में कैसे लगा हुआ है, जब कोई अच्छी चीज दिख जाती है कैसे उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, किसी ऐसी अच्छी वस्तु के विषय में सुनते हैं तो कैसा अच्छा दिल करता है कि हमको वो प्राप्त हो जानी चाहिए। मन को आता ही लगना है, बस कुछ ऐसा बताने वाला हो, कुछ ऐसा श्रवण करने को मिल जाए कि मन को लगा दे। अब संसार में लगने के लिए भी सुनते ही आए हैं, है ना, संसार में लगाने के लिए भी मन को सुना ही है ना। किसी ने सेल के बारे में बताया, भाई यहाँ पर ऐसी सेल लगी है, सुना तो मन लगा कि हाँ मैं जाके परचेसिंग करनी चाहिए। किसी ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया, भाई ये तो बहुत अच्छी है। किसी होम रेमेडी के बारे में बताया कि भाई इससे इतना अच्छा लाभ होगा, तो उसकी ओर मन लगता है ना। जिसको सुनते है ना, तो धीरे धीरे मन उसमें लग जाता, मन को आता ही लगना है खाली, बस ये कि वो सही दिशा में लगे, वो कृष्ण के चरणों में लगे, इसके लिए है भागवत कथा। तो गुरु ने क्या कहा, एक काफी है। कृष्ण ने भी तो एक ही को सुनाई, करोड़ों की सेनाएं खड़ी थी, है ना, 11 अश्वणी कौरवों की थी और 7 अश्वणी पांडवों की सेना थी। ऐसा नहीं सोचो और इतने सारे लोगों को मैं प्रचार करूंगा तो कितना फेमस हो जाऊंगा, कृष्ण ने ये तो नहीं सोचा। सुनाया तो उसी को जो कि वास्तव में सुनना चाहता था। शुभदेव गोस्वामी के सामने बहुत सारे लोग थे, लेकिन श्रोता यदि किसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, परीक्षित महाराज, एक ही काफी है। बट वो आए तो ये सोच के आए कि समय बहुत कम है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। मन में खाली ये हो कि मैं फिर कितने ना जाने जन्म गुजर गए और ये जन्म भी आधे से ज्यादा गुजर गया, अब तो समय बहुत कम है और मैं इस समय में किसी भी सूरत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आऊंगा। बस ये हृदय में इच्छा रखने वाला एक ही शिष्य काफी है। तो हमें कभी भीड़ की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, इसकी ओर आकर्षित होना चाहिए कि कौन है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो हमने बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं दधीचि ऋषि से, देवता जब वृत्तासुर से हार गया, देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र जब वृत्तासुर निकल गया, तो फिर सारे देवता भगवान के पास गए और भगवान ने उपाय बताया कि दधीचि मुनि की ऋषि हड्डियों की जब हम वज्र बनाएंगे तो उससे वृत्तासुर का वध हो सकेगा। सारे देवी देवता मिलकर दधीचि मुनि के पास गए और उनसे याचना की कि हमें अपनी हस्तियाँ दे दो। दधीचि मुनि ने कहा, क्यों मजाक करते हो, हस्तियाँ भी कोई देने की वस्तु है, क्या कोई हड्डियाँ अपनी को ले सकता है। लेकिन फिर बाद में कहा कि हम तो आपसे उपदेश सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहने के बाद इंद्र ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि हम किसी के लिए काम आ सके। और जब इंद्र ने इतना अच्छा उपदेश दिया तब दधीचि मुनि ने कहा, आपसे उपदेश सुनने के लिए तो मैंने ऐसा कहा था, मैं तो वास्तव में कृतार्थ हो गया उस समय जब भगवान ने मेरे इस शरीर को आपकी ऊपर जो है कृपा करने के लिए च्वाइस किया। मुझे भगवान ने ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों की संकट से आपको दूर कर सकूं, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और फिर उसके बाद दधीचि मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि मनुष्य जीवन कब सफल होता है, जब हम किसी के लिए कुछ कर सकते और किसी के संकट को, किसी दुख, अगर कोई दुखी है उसके दुख में दुखी होना और कोई सुखी है उसके सुख में सुखी होना, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और दूसरों को किस तरह से दुख से छुड़ाया जा सके, वही वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए किसी वैष्णव का। लेकिन यहाँ पर भी आकर बहुत सारे लोग जो है उनकी मति भ्रमित होती है। वो यही सोचते हैं कि इस शरीर को कैसे फैसिलिटी दी जाए, इस शरीर को कैसे आनंद दिया जाए, कितना उसको ना शारीरिक सहूलतें प्रदान की जाए, यही है शायद दूसरों के ऊपर कृपा। लेकिन शरीर तो वस्त्र है। भगवान ने कहा वासां से जीर्णं यथा विहाय, वास्तव में वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो भगवान से दूर है। वास्तव में जीव कष्ट में इसलिए है क्योंकि उसने अपना संबंध भगवान से तोड़ दिया है। इसलिए वास्तव यदि किसी के ऊपर करुणा करनी है तो किसी को भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए, उसको भगवान के नाम की महिमा को बताना चाहिए, उसको भगवान की महिमा को बताना चाहिए, उसे ये याद कराना चाहिए कि आप भगवान के अंश हो। जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास, ये भगवान का दास है। जब भगवान की सेवा करेगा तो स्वतः आनंदित हो जाएगा। भगवान की सेवा करना यदि हम किसी जीव को सिखाते हैं तभी उसके दुख दूर हो सकते हैं, वरना जो उसके भाग्य के दुख है ना वो तो आते ही रहेंगे, कर्मों के अनुसार उसे मिलते रहेंगे। आप किसी को कितना खिलाओगे, कितना उसको भौतिक फैसिलिटीज दोगे, जब उसकी जीत ना रति घटे ना तिल बढ़े, जो भाग्य से लिखा गया है ना वही मिलेगा, चाहे कितने बड़े दानवीर क्यों ना बन जाओ। लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो हमारे भाग्य में नहीं होती, वो तो हमें प्राप्त करनी होती है, वो तो किसी संत की कृपा से मिल जाती है, किसी भक्त की कृपा से, किसी श्री प्रभुपाद जी के शास्त्र जो है ना वो हमारे लिए कृपा है। ये श्री प्रभुपाद जी के शास्त्र किसी को बताओ कि भाई भगवत गीता पढ़ो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दुख भगवान ने नहीं कहा अर्जुन को, अर्जुन देख मैं तुमको ये ना मैं तो त्रिलोकी का ना छोड़ा पानी पड़ गया तो दुख सब दुख दूर छेगा, बोला क्या ऐसा बोला अर्जुन तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकर आओ नारियल फोड़ो यहाँ पर और रहना छंडा लगाओ सबको। बोला माता स्पर्श कौन थे शीतोष्ण सुख दुख का आगम पाई अनित्याभार, ये सुख और दुख तो गर्मी और सर्दी की तरह आते ही रहेंगे, तो इसको बर्दाश्त करो। वो भगवान बोलते हैं बर्दाश्त करो और यहाँ के लोग बोलते हैं हाँ भाई भूल जाओगे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान बोलता है बर्दाश्त करो, शुक्र करो, भक्ति करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में वो सुख आखिर किस काम का, जिस सुख में भगवान याद नहीं आता है, बलहारी दुख के वो दुख बलहारी होना चाहिए उसपे जो परिपल नाम चलता है। तो दुख तो अच्छे है ना जिसके अंदर हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी के ऊपर कृपा करनी है तो क्या करनी है, उसको भगवान का नाम देना है। तो इतना सुंदर सुंदर, और उसके बाद तो ऋषि मुनि ने कहा कि अमो कष्टम अमो दैन्यम, कि ये संसार में जो भी हमारे पास है जिसके लिए हम जी रहे हैं पारकीय है, वो क्या है, हमारा शरीर हो, हमारा धन हो, या हमारी संबंध है, जितने भी संबंध है वो सब पारकीय है, मतलब दूसरों के लिए है। धन भी दूसरों के लिए कमा रहे हैं, संतान भी दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं, और जितने भी संपत्ति है, धन है, और जो हमारे संबंधी है वो सब दूसरों के लिए। कोई किसी को लेके जाता है अपने साथ करोड़ों की दौलत, और किसी के क्या उसमें से एक करोड़ लेके जाएगा, नहीं। कितने सारे बच्चे बेटे पैदा करते हैं खुशियों को, कितना मेहनत से शोक से उसको पालते हैं, क्या किसी को बोलते हैं बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ अभी भगवान के दर पे जाऊंगा तो मुझे रास्ता रास्ता पता नहीं चलेगा, तुम चलो मेरे हाथ पकड़ के, तो कोई चलेगा हमारे साथ, कोई नहीं चलेगा, अकेले जाना है। इसलिए वो बोलते हैं जब तक ये हमारे पास है ना वो सबको क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए, इसी से उसका सदुपयोग होगा। इतना कहने के बाद श्री भादरानी, जो भादरानी यानी शुकदेव गोस्वामी वो कह रहे हैं श्री भादरायण रूपाख्यम एवं गद्यंगा सर्वसनो परे भगवति ब्रह्मण आत्मानं संयज जयंजुहो एवं कृतव्यवसितो। इतना जब उसने निर्णय कर लिया, व्यवसितो मतलब ये निर्णय कर लिया, किसने? दधीचि मुनि ने एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि एक न एक दिन तो ये शरीर मुझे छोड़ के जाएगा ही, और मुझे जब छोड़ के जाएगा यानी कि आत्मा शरीर से तो अलग होनी है, तो क्यों ना मैं अपने इस शरीर का स्वयं ही त्याग कर लूं और इन सारे देवी देवताओं का कल्याण करने के लिए अपनी हड्डियां इनको दे दूं। जब ये निर्णय कर लिया तो दुग अर्थ अथर्वस्तनम, अथर्वस्तनम अथर्व कौन है? अथर्व एक ऋषि है और उस ऋषि के पुत्र हैं दधीचि ऋषि, तो ये बहुत ज्यादा महान ऋषि है। यहाँ पर बादराणी यानी सुखदेव गोस्वामी अथर्व ऋषि का नाम लेके कहते हैं कि इतने महान ऋषि की संतान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दधीचि ऋषि। आज एक साधारण व्यक्ति से यदि कोई मांग ले कि भाई आप एक काम करो, मुझे अपनी एक उंगली काट के दे दो, साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं, लेकिन ये अथर्व ऋषि के पुत्र हैं, महान व्यक्ति की महान संतान है, इसीलिए उनके लिए ऐसा संभव था कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैं अपनी हड्डियाँ आपको दान में दूंगा। और फिर उन्होंने क्या किया? परे भगवती ब्राह्मण यानी परम भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में आत्मान संयज जुहो, आत्मान यानी भगवान में अपना मन लगाया और अपने शरीर को त्यागा, अपने मन को पहले भगवान के अंदर लगाया। अभी यहाँ पर जो है भादरायणी यानी सुखदेव गोस्वामी हमको एक बहुत ही सुंदर कला सिखाएंगे। इस संसार में जो भी आता है ना, उसके माता पिता उनको जीना सिखाते हैं, सिखाते ना कि ऐसे जिया जाए। छोटा बच्चा होता है, उसको सबसे पहले तो स्माइल करना नहीं आता, फिर उसको कैसे भी करते हैं, टिकिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, उसको हंसना आ जाएगा, फिर वो हंसता है, रिस्पॉन्स देता है, फिर उसको खाना सिखाते हैं कि खाते कैसे हैं, पहले उसको बैठना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे हर एक चीज उसको सिखाते हैं ना, फिर बताते हैं कि ना हर पार्ट ऑफ बॉडी सिखाते हैं, फिर आईज का है, फिर आईज दिखाता है, फिंगर दिखाता है और हर चीज दिखाता है, अपने पार्ट ऑफ बॉडी सिखाता है, और उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है उसको वर्ड दिखाते हैं, सारे फ्रूट के नाम सिखाएंगे, एनिमल्स के नाम सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी चीजें संसार की कि ऐसे खाना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, मतलब जीना सिखाते हैं ना। जो बच्चा पैदा होता है संसार में हम उसे जीना सिखाते हैं, लेकिन जीना सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें मरना आना चाहिए। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग तो हर जगह पे सिखाया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जंगल में यदि कोई आदिवासी होते हैं उनको भी पता होता है मुंह से खाया जाता है, उनको पता होता है, पता तो कोई नहीं है कि मुंह से खाया जाता है, उनको पता होता है, उनको भी वॉक करना आ जाता है, बड़े होते हैं तो चलना सीख जाते हैं और अपनी ना कोई लैंग्वेज तो उनको सीख जाते हैं, और यहाँ तक कि बड़े होते हैं तो संतान उत्पन्न करना भी उन्हें आ जाता है, कोई उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। अकेले में उस जंगल में भी किसी बच्चे को छोड़ गया ना, जी तो लेगा अगर उसकी जिंदगी में जीना है, लेकिन जीना तो सीख लेते हैं, मरना नहीं सीखते, इसीलिए बार बार मरना पड़ता है। ये वाला सही नहीं मरा, अभी जा पैदा हो वापिस सही वाला मर गया। तो यहाँ पर दधीचि सिंह ये जो सुखदेव गोस्वामी है वो आर्ट ऑफ डेथ सिखा रहे हैं कि मरना कैसे चाहिए, क्योंकि वो जैसे हम जब एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं तो जान से जमीन पर की न मरी तो खुद न कहो, तो खुद न कहो जा पैदा होना तो आ गया ना, पैदा तो कोई भी हो जाता है, कुत्ते के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, है ना, उनको कोई है ना किसी बड़े मैट्रिमोनी होम की जरूरत नहीं होती है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, गटर में बैठे हुए सुअर में बच्चे पैदा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मरना आना चाहिए, लेकिन मरना नहीं सीखा ना तो कुछ नहीं किया संसार में। तो आज यहाँ पर बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी मरने की कला, वे कहते हैं यदाक्षा समरो बुद्धि तत्वदय ध्वंसतम बंधन आस्थितः परम योगम न देहि मुहुरीगतम। यदाक्षु सबसे पहले यत, यत मतलब वश में करना है, मरने से पहले यदि वश में नहीं किया तो समझो मरना नहीं आया। वश में किसको करना है, सबसे अक्ष, अक्ष मतलब अपनी इंद्रियों को। आर्ट ऑफ डेथ में सबसे पहले बता रहे हैं यदाक्ष, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। एक तो ऐसा होता है बूढ़े हो जाते हैं, मरने वाले होते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं, फिर भी बोलते आज एलर्जी तो गई है मछली बनाए। मरने वाली अम्मा अभी भी मछली खाने का दिल है, मतलब सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। इधर आत्मा भी टिके उन्होंने, आत्मा को क्या बनाए तो ख्वाहिश है इतनी कि मरने के टाइम पर भी, और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मरने के टाइम पर यदि चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह जाएगी ना तो उसके लिए भी चॉकलेट का कीड़ा बन के आना पड़ेगा दूसरे जन्म। इसलिए ख्वाहिश खत्म होनी चाहिए जब तक हम संसार में है ना। अगर मरते दम तक ख्वाहिश रह गई ना तो सब लोग मर गए, और अगर ख्वाहिश मरने से पहले ख्वाहिश खत्म हो गई ना, भले अभी मरे नहीं हो समझो मुक्त हो गए। मुक्ति और मृत्यु में बस एक ही अंतर है, मृत्यु के टाइम पर हृदय के अंदर कोई ख्वाहिश रह गई तो वो मृत्यु है, और ख्वाहिश समाप्त तो समझो मुक्ति है। इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने जीवन में इच्छाओं को खत्म करने की। और इच्छाएं कैसे खत्म होती है जानते हो, इच्छाएं तब खत्म होती है, इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी, मन तो इच्छा करता रहेगा, बस उसको हायर टेक्स्ट देते रहो, है ना। तो अगर कोई है ना किसी के घर में रोजाना अगर है ना कोई फ्रूट आते हैं, समझो वो एक फ्रूट होते ना, फ्रूट की जो होती ना वहाँ पर एक अच्छे वाले एप्पल होते हैं और नीचे खराब वाले एप्पल भी पड़े होते हैं। अब वो अंकल अगर रोजाना खराब वाले एप्पल लेके आता है तो घर में सबको वही आदत है ना वो खराब वाले एप्पल खाने की, मतलब जो सस्ते वाले होते हैं वो खाने। लेकिन अगर उसको वो सस्ते वाले एप्पल खाने की आदत छोड़ा नहीं है तो क्या करना है, अच्छे वाला दे दो सिंपल। अगर अच्छे वाला उसको मतलब मिल गया एक बार तो फिर वो वापस से खराब वाला नहीं खाएगा। कोई भिखारी हो ना उसको सूखी रोटी का टुकड़ा भी उस टाइम पर छप्पन भोजन लगता है जब उसे भूख लगी हुई होती है, भूख में वो कुछ भी खा लेता है, हम भी देखते हैं भूखा मुझे बढ़ गया है ना, भूख में जब अच्छा लगता है। लेकिन उस भूख के टाइम पर उसको सूखी रोटी ना देकर यदि कोई छप्पन भोजन देता है तो क्या वो सूखी रोटी की ओर देखेगा, नहीं देखेगा। बस इतना ही समझना है कि संसारी जो सुख है वो बिल्कुल सूखे हुए हैं, संसारी सुख आनंद देंगे नहीं। वो पता है कैसे है, चवण स्वीट और तस्वीर, ये बिल्कुल जैसे गन्ने का होता है, गन्ना होता ना उसको चूस के फेंक दो, फिर दूसरा है उसको भी थोड़ा चूसे, तीसरा है उसको फिर भी थोड़ा चूसे, और फिर चौथा आएगा क्या उसके लिए थोड़ा रस बचेगा। तो ये संसारी सुख जो है वो करोड़ों जन्मों से हम उसको चूसते आए हैं, अब उसमें टेस्ट है ही नहीं। इसलिए अपनी जुबान को अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट देना चाहिए, जब उनको हायर टेस्ट मिलेगा तो वो वश में आएंगे। आंखों को भगवान के दर्शन, संसार तो बिल्कुल फीका है कन्हैया के सामने। भगवान कहते हैं यत यत विभूति यत सत्वम श्रीमरुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम्
नमते जो अंश संभव संसार में जो कुछ तुम्हें देखने लायक लगता है, जो कुछ तुम्हें प्रेम करने लायक लगता है, जो लवेबल लगता है, अडोरेबल लगता है, उसको देखकर बस इतना सोच लो कि ये मेरे अपार तेज का एक छोटा सा सपुलिंग मात्र है, एक छोटी सी चिंगारी है मेरी भड़कती हुई अग्नि की। और ये मत सोचो कि वो कितना सुंदर है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है, उसको देख के बस ये सोचो कि जब ये इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, जब इसमें इतना आकर्षण है तो उसमें कितना आकर्षण होगा जो कि पूर्ण है, किंतु छोटा सा अंश है वो मुझे इतना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इतना उसे प्रेम करने को दिल कर रहा है, इसे प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो वो कृष्ण कितना आनंदमय होगा। इसलिए ये शास्त्र हमें ये सिखाता है कि संसार में कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई सार हो, वो तो भगवान का छोटा सा नमूना है। सारा का सारा आनंद कहाँ है, सारा का सारा ऐश्वर्य कहाँ है, सारा का सारा सौंदर्य कहाँ है, वो तो नख चंद्र के अंदर है। ये वृंदावन चंद्र के जो चरण कमल है ना, उनका नख जो है ना, नाखून, उसके नख के अंदर उतना पावर, उतनी शक्ति, उतनी सुंदरता है जो त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलती। अगर वो हायर टेस्ट हमारे इंद्रियों को देसी की तरह शुरू शुरू में खाएंगे ना, हमारा द्वारा जैसी की रोटी हर किसी को हजम नहीं होती, लेकिन जब धीरे 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 उसकी आदत लग जाए ना, फिर डालडा घी तो मुंह से निकलता है, मूवमेंट आता है, ये रोटी खा ली अच्छा, ऐसा लगता है कि किसी ने ना और क्या खिला दिया। तो भले शुरू में हमें टेस्ट नहीं लगता, भले वो इसलिए नहीं लगता कि करोड़ों जन्मों से तो संसार को ही चूसा है, संसार के ही अनासुख में आनंदित होने की इच्छा की है, अब जब समय आया है, बुद्धि आई है, तो भगवान में टेस्ट आता नहीं। लेकिन धीरे 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 यदि हम यही कथा को सुनते रहेंगे और अपनी इंद्रियों को यादाक्षो, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, और दूसरे के बाद उसके बाद मन, अपने मन को। कोई लोग बोलते हैं भाई मन कंट्रोल नहीं होता, मन कंट्रोल होने वाला नहीं है, आप स्थूल को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हो, मन तो सूक्ष्म है, मन तो ऐसा नहीं है ना कि उसको एक जगह पे बिठा के डोरी से बांध ले, ऐसा नहीं कर सकते, मन तो सूक्ष्म है, मन को तो कंट्रोल करना संभव नहीं है, इंद्रियों को तो कर सकते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनो विद्यते तदस्ति हरति प्रज्ञा वायु नावम अवाम्बसी। इंद्रियाणाम ही चरता, मन अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, मन उधर लगेगा जहाँ पर इंद्रियां होंगी, है ना। आप बैठे रहो, अपनी इंद्रियों को यदि आप भगवान की सेवा दे रहे हो, अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हो, कानों से भगवान की कथा सुन रहे हो, जिह्वा से भगवान का दिया हुआ प्रसाद अर्पण कर रहे हो, हाथों से भगवान की सेवा करो, मन कैसे किधर जाएगा। मन तो तब जाता है जब इंद्रियों को कुछ और देते हैं। हम लोग बोलते भाई मन में तो हम भगवान का नाम जपते हैं, अभी जरूरी थोड़ी सारा दिन भगवान के ही दर्शन करते रहें, तो फिर थोड़ा क्या करते हैं, ड्रामा देखते हैं, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, थोड़ा हम क्या करेंगे यूट्यूब पे कुछ इधर उधर की वेबसाइट सर्च करेंगे, फिर जो सर्च करेंगे क्या वहाँ पर मन नहीं जाएगा। वो अजामिल इतनी तपस्या करने के बाद एक छोटा सा दृश्य देखकर भटकते हैं, तो हम वो विश्वामित्र जो इतने समय से तपस्या कर रहा था, एक पायल की झंकार सुनी सारी तपस्या भंग हो गई, और हम सोचते भाई मन में भगवान का नाम जप कर रहे, इंद्रियों को तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, हाँ हम तो वे सब कुछ करते हैं, सिनेमा में जाएंगे, ये करेंगे, ड्राम पार्टी करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, मन तो पवित्र है ना भाई, आप तो विश्वामित्र से भी आगे दिखते गए, है ना। मन ऐसे पवित्र नहीं, भगवान ने यहाँ पर धरती जी मुनि बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे, पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन की बात मत करो, मन तो भगवान
भगवान ने साफ साफ कहा कि मन असोयम महाभाव मन दुर्निग्रहम चलम। ये तो भगवान ने जिसने मन बनाया है, जो मन के अंदर रहता उसने भी बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो अर्जुन जो स्वर्ग में जाकर अप्सराओं को ठुकरा के आ गया, वो अर्जुन बोलता है संचलम ही मनो कृष्ण प्रमाणि बलव दृढ़। अर्जुन बोलता है कृष्ण मन तो बहुत कठिन है, उसको रोकना मुश्किल है बोल। तो कृष्ण अर्जुन तो भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलते क्या करो अपनी इंद्रियों को वश में करो, मन को और बुद्धि को। आक्षुस मनो बुद्धि, अपनी बुद्धि को। ये बुद्धि जो होती है वो सारथी है, इंद्रियां घोड़े की तरह है, मन लगाम है। इंद्रियां अब देखो घोड़े जो है वो अगर इधर उधर चले जाएंगे मन की लगाम, मतलब उसको अगर लगाम उसकी नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गलत दिशा में। सबसे पहले तो सारथी को इतना चतुर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे लगाम को कैसे पकड़ना है, और लगाम यदि सही पकड़ेंगे तो घोड़े सही दिशा में जाएंगे। लेकिन घोड़े जो है वो अगर लगाम उसकी सही नहीं पकड़ी जा रही है तो फिर क्या होगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से बुद्धि को पहले ये डिसाइड करना है, बुद्धि को पहले ये बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। इसके लिए शास्त्र है। कोई बोलता है भाई हमसे गलती हो गई, शास्त्र के अनुसार जियो। और फिर मन की भले कोई भी इच्छा हो, मन की लगाम बुद्धि जो है वो इतनी काबू कर ले कि वो इंद्रियों के घोड़े भागने ना पाए। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कुछ नहीं दिखने देना है। उसके बाद मन को कंट्रोल करके भगवान की चरण में लगाना है। फिर बुद्धि जो है वो सही डिसीजन लेगी कि अब ये नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, तत्व ध्वस्त बंधना। जब ये कर लेंगे ना तब सारे बंधन छूट जाएंगे। वास्तव में ये बंधन ही तो है जो हमें बार बार संसार में बेचते हैं। आपको लगेगा भाई हम तो बंधन में नहीं है, हमारे हाथों में कोई बेड़िया नहीं है, हम तो जिधर चाहे स्वतंत्रता से जा सकते हैं, और फिर 14 अगस्त को आजादी मुबारक भी लिख देते हैं। लेकिन बंधन नहीं दिखता, ये वाला बंधन जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक बंधन है कि हम अब तक ना जाने कितने जन्मों से इस बंधन में बंधे हुए हैं। सबसे पहले क्या है ये पता है ना कि हम सब कौन है, आत्मा है। आत्मा के ऊपर सबसे पहला बंधन है मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर का बंधन जो बहुत कठिनाई से, ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर है वो तो एक समय पे मर जाता है, यहीं पर रह जाता है। ये मन बुद्धि अहंकार जो है ना वो आज से हमारे साथ है। जब तक आत्मा है ना, मन बुद्धि अहंकार नहीं बदलते, वो यही रहते हैं। वही तो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण, मन में इच्छा है तभी तो आत्मा बिचारी को दूसरी। अरे मन के अंदर इच्छा हो जाती है ना संसार में, अभी के इस संसार में कभी किसी किसी को ये काम होता है, किसी को बताओ कि भाई थर्सडे को क्लास होती है, आप लोग थर्सडे को क्लास में आया करो, तो बोले भाई हमें तो इतने सारे काम होते हैं, हम तो काम से फुर्सत नहीं होती है। देखो हमारे यहाँ पर भगत लोग नहीं आते, पुरुष लोग नहीं आते, सबके कितने जरूरी जरूरी काम होते हैं, है ना। वो काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, भागवत कथा थोड़ी ना इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वो साहब सोचते हैं भाई हम अपने काम करें या बैठ के आप लोगों को थोड़ी कोई काम है, हमको तो बहुत सारा काम होता है, इतनी देर से हम लोग दुकान से आते हैं, इतना सुबह से लेकर रात तक हम लोग को काम ही करना होता है, भागवत कथा के लिए समय नहीं है। तो भगवान पता है क्या सोचते हैं, भगवान सोचते हैं इनको तो बेचारों को काम ही करना है ना, भागवत कथा तो सुननी ही नहीं है, तो फिर इनको मनुष्य बनाने का क्या फायदा, है ना। मनुष्य बनाया है तो भगवान की भक्ति करने के लिए बना, ठीक है थोड़ा समय काम भी करना चाहिए, अर्निंग भी करना चाहिए, लेकिन मनुष्य बनाया तो मेन क्या है, सवे पुंसा परो धर्मो यतोर्भक्ति यदुक्षते। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का नाम भक्त कीर्तन करना चाहिए। अब इसको इच्छा ही नहीं है तो फिर उसको वो बना ले जिसको खाली काम करना चाहिए, है ना। जो खाली काम करता है 24 आवर्स काम काम काम, कौन करता है, गधे की तरह काम करता, वो खुद मनुष्य बन के होता मंगल का वो क्या गधों की तरह काम ही करना है तो फिर मनुष्य क्यों बनना है, ठीक है ना। तो भगवान भी बहुत चतुर है, भगवान बोलते आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको सर्वगति भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये हम लोगों को क्या लगता है ये बंधन नहीं है, लेकिन ये कितना बंधन है, ये कितना बड़ा बंधन है, मन का बंधन है इस शरीर, इस शरीर का विरोधी मन ही शरीर का बंधन है। जिस जिस लोनी में आप जाओगे ना उसका उसका शरीर मिलेगा, और शरीर की बात बता क्या है संबंधों का बंधन। जिस शरीर में पैदा होगे उसकी माँ होगी उसका बंधन, जिस शरीर में पैदा होगे बाप होगी उसका बंधन, फिर थोड़े बड़े होंगे उसके बाद टीचर का बंधन, टीचर बोलेगी ये वाला होमवर्क कर क्या वो वाला ये बंधन, उसके बाद बॉस का बंधन, बॉस बोलेगा ये काम कर क्या, उसके बाद क्या होगा विवाह होगा पति का बंधन पत्नी का बंधन, फिर बच्चे पैदा होगी बच्चों का बंधन, फिर इस तरह से करते करते अपने आप को ना जाने कितने सूक्ष्म बंधनों में हमने बांध दिया है जो दिखते नहीं है लेकिन मरते दम तक हम लोग को आघात नहीं करते। लेकिन ये तरीका बताया जा रहा है कि यदाक्ष मनो बुद्धि, अगर आपकी इंद्रियां आपका मन आपकी बुद्धि जो है वो वश में हो जाए तो क्या होगा ध्वंस का बंधना, फिर ये सारे बंधन खुल जाएंगे। फिर सारे बंधन खुलने के बाद क्या होगा आज जो परम योगम, फिर आप परम योग में जुड़ जाओगे। जुड़ना तो जीव का स्वभाव है, यदि संसार से जुड़ा रहा तो भगवान से कनेक्शन टूट जाता है, और जब भगवान के साथ जुड़ गया तो संसार वाला स्वतः टूट जाता है। इसलिए ये मरने से पहले ये कला सीखनी है, आर्ट ऑफ डेथ सिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है भगवान के साथ योग जुड़ना चाहिए। यदि मरने से पहले इतना न हो गया ना तो फिर कुछ की न करो तो कुछ न करो फिर तो हम लोग कुछ न किया। अगर भगवान के साथ संबंध जुड़ा नहीं, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ने के लिए ये कथा है। ये हर हफ्ते यहाँ पर हम आते हैं ना सिर्फ इसलिए कि संसार के जो बंधन है ये मन बुद्धि और ये शरीर जो है वो संसार में कितना आकर्षित है वो आकर्षण समाप्त हो जाए। और फिर क्या हुआ इन्होंने ये किस तरह से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के अंतिम समय में मरने से पहले, सबसे पहले दधीचि ऋषि ने अपनी इंद्रियों को वश में किया, अपने मन को अपनी बुद्धि को वश में किया, और इस तरह से वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया, और उसके बाद परम योग यानी भगवान के साथ जुड़ गया, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई न देहम बुभुदे गतम, न देहम बुभुदे, इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई कि उसे पता ही नहीं चला। हालांकि ये मृत्यु वाला जो सीन है ना वो इतना दुखदायक है कि शास्त्र कहता है कि करोड़ों बिच्छू जब एक साथ दंत मारते उससे उतनी पीड़ा नहीं होती है जिस समय यमराज हमारे प्राण हरण करता है। लेकिन उन लोग ऐसा न दे हम बुभुदे गतम, शरीर से प्राण निकल गए उसको पता नहीं चला वो कैसे उतर जाए। जब कोई अगर शराबी हो उसने बहुत बहुत तेज पी रखी हो बहुत ही तेज नशे में, अगर देखो कोई किसी को अपना धन लेना चाहता है, आप अगर जैसे अपनी सैलरी लेके आओ आपके पॉकेट में सारी सैलरी पड़ी हुई है तो आपकी इच्छा होगी कि कोई मेरी सैलरी ले जाए, या फिर कोई अगर लेगा तो कोई देना चाहेगा उसका पूरा महीना उसको चलाना है हरे कृष्ण तो भी है ना वो नहीं देना चाहेगा। लेकिन अगर हरे कृष्ण अगर उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है वो शराब एकदम नशे में हो फिर वो नशे में वो पला होगा कोई उसके पकड़े से सारी सैलरी निकाल के चला जाएगा क्या उसको पता चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरह से जिसको भगवत प्रेम का नशा हो जाता है ना फिर उस नशे में उसके जितना भी संसार के साथ मोह जमा होता है जितना भी उसका ये जो देह के साथ आकर्षण होता है ना आत्मा देह को अपना समझने लगती है उसी के कारण तो दुख होता है मृत्यु के समय
लेकिन क्योंकि आत्मा ने अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ रखा है, वो भगवत प्रेम के नशे में जब वृद्धि होती है तो भक्त को पता नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि आनंद आता है कि अब मैं संसार के झंझट से छूट कर भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए संसार से जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर स्थिति बता रहे हैं कि मृत्यु के समय कैसे होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अंतकाले समाम एव, अंतकाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है हमारे जीवन का, पूरा जीवन जो है वो अंतिम एग्जामिनेशन की तैयारी में गुज कर लोगों ने अच्छा ठीक है अंतकाल में ही तो भगवान का यहाँ ध्यान लगाना है, अंतकाल में लगा लेंगे फिर क्या जरूरत है पूरी जिंदगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, अंतिम समय आएगा तो हम भी ले लेंगे अजमेर की तरह नारायण। एक व्यक्ति ने बोला जब अजमेर वाली कथा सुनाई किसी संत ने तो उसने बोला ये तो बहुत आसान है इजी है अब मैं क्या करूँगा। उसके चार बेटे थे, उसने बोला मैं भी क्या करता हूँ अपने सारे बेटों के नाम भगवान के नाम में चेंज कर देता हूँ। चार बेटे थे अलग अलग नाम थे चिंटू बेटू ने तो उसने क्या किया सारे बेटों के नाम चेंज कर दिए। उसने बोला अपने गुरु को बोला अच्छे नाम बताओ चार चाहिए, चार चाहिए तो फिर सप्तियों के नाम रखो क्या वसुदेव प्रद्युम अनिरुद्ध संतोष ये तो अच्छे ही बोल बोला इससे ये वाली मुक्ति वाले है ना, बोला हाँ है तो अपने चारों बेटों के नाम चेंज करिए और लिखा संकर्ष वसुदेव अनिरुद्ध और प्रद्युम। चारों बेटों को एक बहुत ही सुंदर एक बना दुकान बना के दी, उनके ऊपर वो बैठ के काम करते थे, एक को अंकेश्वर बनाया एक को क्या बना एक को क्या बनाया। तो अंतिम समय हुआ पिताजी की मृत्यु होने वाली थी तो उसने बोला जो भी उसे पुकारा था कि अना मेरे बेटे आ जाएगा तुझे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण आ जाओ, उसने सोचा कि मैं बुलाऊं ताकि ना मेरा भी अजमेर की तरह उद्धार हो जाए, वो बुला रहा था उसने सोचा अभी यहाँ पर तो मेरे बेटे नहीं है मेरे बेटे तो दुकान पे सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं खाली बुला रहा हूँ बुलाए जोर जोर से। तो किसी ने जाकर उनके बेटों को बताया पप्पा तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल गए और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो चलो चलो उसको देखो। तो सारे बेटे जो है वो दुकान छोड़ कर आ गए और जब उसको उनको देखा तब उनके पिताजी बोलते अरे तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो बोला कि हाँ दुकान में तो कोई नहीं है तुम दुकान छोड़ कर कैसे आ गए। तो उन चारों ने कहा कि आपने इतना हमें बुलाया था आप इसलिए हम लोग सारे छोड़ के आए, बोला इतने सारे चूहे हैं सारे जो है ना दुकान की खाली बोरियां है ना वो गुंदर गुंदर के खाते दुकान को बंद करके आए हो या खोल के आए हो दुकान में कोई नहीं है इतना बोला था उसके प्राण निकल गए, आप बताओ क्या बन जाएगा शुरू में प्राण अटके थे इतना आसान नहीं है अजमेर के साथ तो क्या हुआ था इतना समय उसने भगवान का नाम लिया था थोड़े से पतन के कारण उसके साथ ऐसा हुआ था क्योंकि थोड़ा पतन हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता 2.40 में कहते हैं आपकी भक्ति कभी नाश नहीं होती नेहा विक्रमनाश होती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं यमदूत चले गए थे भगवान के दूत आ गए थे लेकिन उस समय अजामिल भगवान के धाम नहीं गया था, वो तो उसको तो वापिस एक चांस मिला था और 13 साल तक उसने बदरी का आश्रम में जाकर तपस्या की थी तब कहीं जाके मुक्त हुआ था। ऐसा कोई आशा नहीं है भगवान की प्राप्ति कर लेना बस नाम है, भगवान के अंदर आकर्षण होना चाहिए भगवान के साथ योग जुड़ना चाहिए भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ना चाहिए उसी के लिए कथा है उसी के लिए प्रसंग है और उसी के लिए हमें नाम सेट करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान से प्रेम कर सकूँ अपनी सेवा और साधना कर सकूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरि राधा हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।